अध्याय दो, समाज कल्याण कार्यक्रम पद्धतियां और मॉडल, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स मेथड्स एंड मॉडल्स। समाज कल्याण के कार्यक्रम सभी देशों में एक तरह ही हो ऐसी आशा नहीं की जा सकती। विभिन्न देशों में उनका भिन्न भिन्न रूपों में होना स्वाभाविक है। इसके कई कारण हैं, जैसे प्रत्येक देश में प्रतिदान, कृपालुता, दानशीलता और पारस्परिक सहायता की अपनी परंपरा है। इसकी अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सरकारी पद्धतियां हैं। प्रत्येक देश का क्षेत्रफल, परिणाम, जनसंख्या, इसके विकास का स्तर, इसके लाभकर्ताओं की आवश्यकताएं, इसका प्रशासनिक ढांचा और इसके प्रशासन अधिकारी तथा अंततः इसके वित्तीय स्रोत भी उस देश के समाज कल्याण कार्यक्रम के भिन्न भिन्न होने के कारण हैं। समाज कल्याण कार्यक्रमों को निर्धारित करने वाले तत्व, फैक्टर्स डिटरमिनेटिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। विकसित देशों में समाज और कल्याण सेवाओं के स्तर और मार्ग को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्वों में जनसंख्या की वृद्धि, श्रमिक वर्ग की संरचना में परिवर्तन, कृषि से औद्योगिक रोजगार में बदलाव, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाना, पारिवारिक जीवन के ढांचे में परिवर्तन, चिकित्सा शास्त्र और समाज शास्त्र की प्रगति, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की ज़्यादा अच्छी समझ और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रावधान शामिल हैं। विकासशील देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, जहां शताब्दियों से परंपरागत आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं निर्बाध रूप से कार्यरत हैं, औद्योगिक और कृषि संबंधी क्षेत्रों में तकनीकी विकास माध्यमों से ऐसे नाटकीय परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण से व्यक्ति और परिवार का ख्याल रखने वाली पूर्व निर्मित पद्धति विश्रृंखलित हुई है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में संबंधों की अत्यंत निकटता ने भूतकाल में आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा को पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया है, पर आज की परिवर्तनीय स्थितियों में वे संबंध उतने प्रभावशाली ढंग से क्रियाशील नहीं हो सके। दूसरी बात यह है कि एशिया के अनेक देशों ने द्वितीय महायुद्ध के बाद जो आज़ादी प्राप्त की तथा फलस्वरूप उन देशों के लोगों के मन में भविष्य के लिए जो आकांक्षाओं की लहरें उठी, उन्हें समाज और कल्याण सेवाओं की पद्धति को प्रभावित किया। तीसरी बात यह है कि विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि एकदम हुई। वहां पहले ही गरीबी बहुत व्यापक थी और उनके स्रोतों में कमी के कारण आर्थिक और सामाजिक प्रगति का दायरा सीमित था। इसके फलस्वरूप वहां समाज और कल्याण सेवाओं के प्रावधान में विशेष समस्याएं उठ खड़ी हुई। इसलिए इन देशों की शक्ति प्राथमिक रूप से जन्म दर को कम करने के प्रयासों में ही केंद्रित रही। पृष्ठ संख्या 30। चौथी बात यह है कि कल्याण कार्यक्रमों में जनसंख्याओं का आयु आवंटन भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। विकासशील देशों में नवयुवकों की संख्या कुल जनसंख्या का 49 से 55% है। इस कारण से समाज और कल्याण के कार्यक्रमों में उन पर राष्ट्रीय आय का आनुपातिक रूप से अधिक अंश उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च होगा। इसमें यह बात ध्यान रखने योग्य है कि युवा वर्ग अधिकांशतः आर्थिक दृष्टि से गैर उत्पादक अथवा अनुत्पादक वर्ग में ही आता है। इसी तरह विकासशील देशों में आश्रित वर्ग का अनुपात, जो 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष की आयु में आते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक की दर की दृष्टि से सबसे अधिक हैं, जिसके फलस्वरूप कल्याण सेवाओं के प्रावधान की संभावना और भी कुप्रभाव पड़ता है। पांचवी बात यह है कि औसतन आयु सीमा में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से विकसित देशों में, नॉर्वेजियन देशों में पुरुषों की औसतन आयु सीमा 71 वर्ष और स्त्रियों की 76 वर्ष है। भारत में औसतन आयु सीमा पुरुषों की 58.1% और स्त्रियों की 59.1% है। बूढ़े और युवा वर्ग की जनसंख्या का अनुपात ही अपेक्षित समाज और कल्याण सेवाओं का बहुतायत से निर्धारण करता है। छठी बात यह है कि श्रमिक दल की संरचना में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन का कल्याण सेवाओं का दूरगामी प्रभाव पड़ा है और श्रमिक दल में स्त्रियों के वर्ग की आनुपातिक वृद्धि इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है। स्त्रियों की बढ़ी हुई भागीदारी, जिसमें अधिकांशतः कामकाजी माताएं हैं, ने घर और बच्चों के प्रबंध की समस्या से निपटने के लिए नए समाज और कल्याण सेवाओं की आवश्यकता को उत्पन्न किया है। अंत में तीव्र गति से बढ़ते हुए शहरीकरण ने नई नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या परिगणन विभाग के अनुमानों के अनुसार संसार की जनसंख्या में शहरी संख्या 1950 में 29% थी, 1975 में 35% थी और 1985 में 43% थी। इस शताब्दी के अंत तक यह शहरी जनसंख्या बढ़कर 50% से अधिक हो जाएगी। इस समय संसार की जनसंख्या 6.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और 2000 ईस्वी तक 8 बिलियन से अधिक हो जाएगी। संसार की शहरी आबादी को 1950 और 1975 के बीच 2 गुणा हो गई, 1975 और 2000 के बीच और दुगनी हो जाएगी। ऐसी स्थितियों में शहरी क्षेत्रों में समाज और कल्याण सेवाओं की समस्याओं पर जोर देने तथा उनकी पहुंच के विषय में परिवर्तन करने अत्यंत अपेक्षित हैं। कुछ भी हो, प्रत्येक देश अपने वित्तीय स्रोतों को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों के लिए किसी न किसी प्रकार के कल्याण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रयासशील हैं। अपने अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश के द्वारा निर्धारित व्यापक कार्यक्रम की सूची देना तो हमारे लिए संभव नहीं है। फिर भी कल्याण कार्यक्रमों के अनेक प्रकारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों के लिए उपयुक्त इन कार्यक्रमों पर नीचे विचार करने का प्रयत्न किया गया है। वे कार्यक्रम हैं: पृष्ठ संख्या 31, नंबर 1, परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर। परिवार कल्याण सेवाएं इसलिए दी जाती हैं कि वे व्यक्तियों और परिवारों को इस योग्य बनाएं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, आर्थिक दबाव का सामना कर सकें, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में सामंजस्य ला सकें और परिवारों के संचालन में सुधार ला सकें। जिनके तत्वाधान में ये सेवाएं दी जाती हैं, वे हर देश में भिन्न भिन्न हैं। कुछ देशों में प्रत्येक कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से आयोजित होता है, जबकि कई अन्य देशों में प्रत्येक कार्यक्रम सामुदायिक केंद्रों में बड़े बड़े कार्यक्रमों में समेकित किया जाता है। अधिकांशतः विकसित देशों में मुद्रा सहायता के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम परिवार कल्याण सेवाओं के अभिन्न अंग बन जाते हैं, किंतु विकासशील देशों में बहुत ज्यादा गरीबी के तथा स्रोतों की कमी के कारण इस प्रकार की मुद्रा सहायता प्रायः अप्राप्य रहती है, तथा फिर यदि प्राप्त भी हो जाए तो यह सहायता अत्यंत सीमित होती है। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त परिवार कल्याण संस्थाएं मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए केस वर्क सहायता तथा दूसरी सहायता भी प्रदान करती हैं। प्रायः अनेक परिवार कल्याण कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: रोमन का 1, विवाह विषयक परामर्श, मैरिज काउंसलिंग, परिवार कल्याण एजेंसियों के माध्यम से दी जाने वाली मुख्य सेवाओं में एक सेवा विवाहित युगलों के वैवाहिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना तथा उनके वैवाहिक झगड़ों को निपटाना भी है। विवाह विषयक परामर्श की आवश्यकता इस बात से स्पष्ट होती है कि विकसित देशों में इस समय विच्छेद और तलाक की दर बढ़ गई है। हाल ही में यह स्थिति विकासशील देशों में भी पनपने लगी है। विकसित देशों में कनाडा में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत परिवार परामर्श सेवाएं अत्यधिक मात्रा में सुलभ हैं। जापान देश में नागरिक परामर्श सेवाओं का निरीक्षण समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अमेरिका, बर्तानिया और दूसरे पश्चिमी यूरोपीय देशों में विवाह परामर्श और सामाजिक केस वर्क सेवाएं सार्वजनिक और व्यक्तिगत तौर पर प्रवर्तित समाज कल्याण सेवाओं के एक हिस्से के रूप में विस्तृत स्तर पर उपलब्ध हैं। इसके सर्वथा विपरीत सोवियत यूनियन में विवाह परामर्श की किसी भी औपचारिक पद्धति का प्रायः पूर्ण अभाव है। वहां तलाक की कचहरियों में स्थित निर्णायक पहले तो दोनों दलों में समझौता करवाने का प्रयास करते हैं, समझौता न हो सकने की दशा में वे तलाक दे देते हैं। कुछ विकासशील देशों यथा कुछ रूढ़िवादी पश्चिमी देशों में परिवार परामर्श और निर्देशन की एक अपेक्षाकृत नई सेवा है जो केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। इन देशों में संयुक्त परिवारों या बड़े परिवारों के मुखिया और धार्मिक समुदाय के नेता अनौपचारिक रूप में उपदेशात्मक या परामर्शमयी सहायता देते हैं। भारत के प्रमुख नगरों में परामर्शदाताओं की उपलब्धि आरंभ होने लगी है। पृष्ठ संख्या 32, रोमन का नंबर 2, माता की देखभाल और परिवार नियोजन, मैटरनल केयर एंड फैमिली प्लानिंग। माता की देखभाल के कार्यक्रमों में गर्भावस्था से लेकर बाद तक बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले तथा विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उठाए जाने वाले पग शामिल हैं। प्रायः सभी देशों में ये सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग हैं। ये सेवाएं सामाजिक बीमे और मातृक लाभ योजनाओं से जुड़ी हुई हैं। विकासशील देशों में माता और शिशु की मृत्यु की ऊंची दरें इस बात की सूचक हैं कि वहां माता और शिशु के स्वास्थ्य के कार्यक्रम गुणात्मकता तथा मात्रा की दृष्टि से अपर्याप्त हैं। विकासशील देशों में शिशु और माता की देखभाल की मात्रा इस स्थिति से जानी जा सकती है कि हमारे देश में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या 7,50,00,000 है और प्रसवावस्था से युक्त या प्रसूत युक्त माताओं की संख्या 2,00,00,000 है। इतनी विशाल संख्या के लिए विस्तृत कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए विशाल स्रोतों की आवश्यकता है जो इस समय अनुपलब्ध है। आवश्यकताओं और स्रोतों में यह अंतराल अधिकांशतः विकसित देशों में पाया जाता है। विकासशील देशों में भारत और पाकिस्तान पहले देश थे जिन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण को अपने राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां गर्भपात को वैधानिक करार देकर जनसंख्या वृद्धि को पूर्णतः रोका गया है। वहां जन्मों की कुल संख्या में गर्भपातों की संख्या बढ़ी है। रोमन का नंबर 3, परिवार जीवन शिक्षा, फैमिली लाइफ एजुकेशन। परिवार कल्याण एजेंसियों द्वारा दी गई सेवाओं में विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में एक सेवा है परिवार जीवन शिक्षा। यह बातचीत, भाषण और रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से स्वस्थ पारिवारिक संबंधों और दक्षता से पूर्ण घरेलू अर्थव्यवस्था का विकास करने में सरंत है। भारत में इस प्रकार के कार्यक्रम औरतों के क्लबों तथा दूसरे समुदायों के माध्यम से जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भाग हैं विकसित किए जाते हैं। रोमन का नंबर 4, गृह सहायता कार्यक्रम, होम हेल्प प्रोग्राम। होम मेकर सेवा या गृह सहायता सेवा सार्वजनिक या स्वैच्छिक कल्याण एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है, जिसके अंतर्गत परिवारों को परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में मदद दी जाती है और परिवार को इस योग्य बनाया जाता है कि वह लगातार रहने वाली बीमारी, विकलांगता या और भी किसी प्रकार की पारिवारिक विपत्ति में टूटने न पाए। गृह निर्माताओं का उनकी दक्षता और उनके व्यक्तित्व के आधार पर चयन होता है। चयन करने के बाद उन्हें घरों में रखा जाता है, जहां माता अपने परिवार की देखभाल करने में कुछ देर के लिए अयोग्य होती है। ये सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि बंधुहीन परिवार या वे परिवार जिनके पड़ोसी भी सहायक नहीं बनते, अपने जीवन को बड़े शहरों के बेरुखे वातावरण में भी ठीक से रखने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कार्यक्रमों की अवधारणा का क्षेत्र व्यापक हो रहा है। इसमें वयस्कों को जो आश्रित हैं, शारीरिक हैं, भावनात्मक रूप से अस्वस्थ हैं या विकलांग हैं, उनके अपने घरों में सेवा प्रदान करना है। स्कैंडिनेवियन देशों में गृह सहायक सेवाएं अत्यधिक व्यापक स्तर पर दी जाती हैं और वहां किसी भी अन्य देश की अपेक्षा इनकी पर कैपिटा उपलब्धि सर्वाधिक है। पृष्ठ संख्या 33, रोमन का नंबर 5, बुढ़ापे में देखभाल, ओल्ड एज केयर। जीवन की रेखा के बढ़ जाने से विशेष रूप से विकसित देशों में बूढ़े लोगों की देखभाल अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। विकसित देशों में बूढ़े लोगों का बचाव समाज, बीमे या सार्वजनिक सहायता योजनाओं के माध्यम से किया जाता है और उन्हें विशाल स्तर पर संस्थानीय देखभाल प्राप्त होती है। विकसित देशों ने ऐसी पद्धतियों को अपनाया है जिनमें सेवानिवृत्ति भत्ता योजनाएं, बुढ़ापा सहायता, संस्थानीय देखभाल, वृद्ध नागरिकों के लिए क्लब, बूढ़ों के लिए घर, पहियों पर भोजन, एक घर से दूसरे घर तक चलती हुई कैंटीनें, मैत्री आगमन, गृह सहायताएं आदि मुख्य हैं। विकासशील देशों में संयुक्त या बड़े परिवार के ढांचे से परंपरागत रूप में परिवारों के वृद्धों में ही देखभाल की विधि को अपनाया था, जहां निवास स्थान से कार्यस्थल पृथक नहीं है, वहां वृद्ध व्यक्ति अपनी आर्थिक उत्पादन क्षमता के ना रहने पर भी परिवार या पड़ोस में होने वाली सामाजिक आयोजनों में सहभागिता रखने के योग्य बने रहते हैं। फिर भी विकासशील देशों अब यह पारिवारिक स्थिति बदल रही है, पुरानी पद्धति परिवर्तित हो रही है। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में वृद्धों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करती, परंतु विकासशील देशों के पास नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि और संसाधनों का अभाव है। फिर भी भारत ने अनेक प्रदेशों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को बुढ़ापा पेंशन देना आरंभ कर दिया है।